आयत 54 से हम देखेंगे, चूंकि वाक्य है तो मैं इसको भी आयतों के साथ गो थ्रू करके फिर जो इसकी मुश्किल चीज़ें होंगी उसको हम बाद में देखेंगे। अभी तक जो बात हो रही थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब वक्त के उलमा पर तनकीद की और उनकी की हुई तब्दीलियों को चेंज करना चाहा तो वो दुश्मन हुए। अब यहाँ बाकायदा आयत 54 से आप लिख लें, साजिश तैयार हो गई। कैसे हुई आइए देखते हैं। वमकरू, और उन्होंने खुफिया तदबीर की। वमकर अल्लाह, और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की। किसकी तदबीर कामयाब हुई? वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन है तदबीर करने में। यहाँ अब वो ख़ास तौर पे प्रोसेस बताया जा रहा है कि किस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जान लेने की कोशिश की गई थी। लफ्ज़ मकर थोड़ा सा समझेंगे तो बात समझ आएगी। मीम काफ़रा, मकर कहते हैं खुफिया तदबीर को। जब गल्ले को घरों में छुपा कर रख लिया जाए तो इसको तमकीर कहते हैं। यानी बाज लोग घर में गल्ला छुपा लेते थे, लोगों को ये लगता है कि है नहीं लेकिन होता था, लेकिन वो बाद में मिल जाता है, तो इसको तमकीर कहते हैं। इसी तरह जंग की तदबीर और हीले को मकर कहते हैं। अच्छा, हमारे एक पंजाबी का मकर है, मकर ना करो, वो क्या होता है? झूठे बहाने, मानी वो भी यही होता है, ठीक है। इसी तरह कहते हैं मकर वो खुफिया तदबीर जो उस शख्स को जिसके खिलाफ ये तदबीर की जाए इस मुकाम तक पहुंचा दे जो इसके वहमो गुमान में भी ना हो। यानी बात समझ आ रही है, हिडन है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने जो तदबीर सोची थी उसी की बात यहाँ अल्लाह ताला करके फरमाते हैं कि उन्होंने तदबीर की। हुआ क्या था कि यहूद के उलमा और मसीह के जो कह लीजिए कि बिगड़ा हुआ गिरोह था उस दौर में, जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही उनके पैगाम को पीछे डालने की कोशिशें की थी, उन सब ने तदबीरें की ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस तरह से पकड़ें कि हम भी ना पकड़े जाएं। ये बड़ी अहम बात है। एक होते जाके सीधे सीधे किसी को कत्ल कर दें, फिर तो आप पे भी इल्ज़ाम आएगा। लेकिन याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई और रसूल हो, लोग ब्राह रास्त उसके मुंह पे आके उसको कत्ल नहीं कर सकते, तो वो छुप के करते हैं। आप बिल्कुल इस वक्त याद करें वो सीरत का हिस्सा कि जो नबी सल्लम की खिलाफ चालें हुई थी, वो ही बिल्कुल इसी तरह से है। उनका दिल क्या था? यहाँ मकर क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने दर पर्दा हज़रत ईसा पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना चाहा कि जिसके बाद हज़रत ईसा वाजिबुल कत्ल करार दे दिए जाएं। और वो इल्ज़ाम क्या था? बहुत बड़ा है, दिल पे हाथ रखने वाली बात है। हज़रत ईसा पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आप मुर्तद हो गए। नाउज़ुबिल्ला सुम्मा नाउज़ुबिल्ला। मुर्तद क्या होता है? जिसने दीन को छोड़ दिया। अब ये इल्ज़ाम क्यों लगाया कि भाई ये तो दीन में बहुत सारी तब्दीलियाँ कर रहे हैं। बहरहाल उस वक़्त रोमन इख्तदार था, रोमन गवर्नर जो था उसने जब इसको प्रूव किया। अब जब तक वो रूमी गवर्नर इसको अप्रूव नहीं करता था किसी को सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी। तो मुल्क का बादशाह अगरचे एक यहूदी था लेकिन उसकी हैसियत एक कठपुतली बादशाह की थी। जैसे आप कह लें कि इंग्लिश हुकूमत के तहत मिस्र के कुछ बादशाह गुजरे हैं। मजहबी अदालतें यहूद की मौजूद थी लेकिन उनके उलमा और जो मुफ्ती थे वो फैसले करते थे, और अगर वो सजाए मौत का फैसला देते लेकिन उस फैसले को नाफिज करना था रोमन गवर्नर ने। बात समझ गए? आप एक जुमला लिख लें, बात वाजे हो जाएगी कि उलमा यहूद के हाथ बंधे हुए थे। वो फैसला दे भी देते लेकिन उस फैसले को प्रूफ वक्के हुक्मरान ने करना था, लिहाजा उलमा ने ऐसी साजिशें चली कि उस मसीही बादशाह को ये साबित करवाना चाहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बागी हो चुके हैं, इन्होंने नौसुबिल्ला दीन को पीछे डाल दिया। अब बड़ी डिटेल्स है, इस वक्त मैं आपके साथ ज़्यादा डिटेल्स कर नहीं सकूंगी, शायद हम सूरत मायदा में जब पढ़ेंगे तो उधर कुछ बात करें। लेकिन आज भी इनकी जो मुख्तलिफ इंजीलें हैं ना, उसमें एक इंजील है इंजील बरनबास। एक मौके पे मुझे भी इत्तफाक हो गया उसका उर्दू तर्जमा देखने का, जो इस वक्त बैन है, उसको लिख नहीं सकते, उसको अपना खोल नहीं सकते, उसकी यानी सारी चीज़ें जो है वो पाबंदी पे है। अगर आप वो खोल के देखें ना, यकीन करें ऐसे लगता है कि आप कुरान पढ़ रहे। वो किताब है जो हज़रत ईसा के फौरन बाद लिखी गई थी लेकिन उन्होंने उसको चेंज कर दिया और उसके अंदर वो उसको बंद कर दिया। आज जो मुख्तलिफ किस्म की इंजील हैं उसके अंदर बात बिल्कुल फ़र्क है। उस बरनबास को जो के कहते हैं कि पॉप की लाइब्रेरी से निकली थी, अगर उसमें देखें तो उसमें क्या कहानी लिखी हुई है कि हज़रत मसीह के हवारियों में से एक हवारी जिसका नाम यहूदा था, उसको यहूद ने रिश्वत दी इस बात पर राज़ी किया कि वो आपकी मुखबरी करे, यानी स्पाई बने, कह लीजिए कि उसको ख़रीद लिया। अल्लाह ताला ने उस गद्दार जो हवारी की शक्ल हजरत मसीह की कर दी। अब कैसे की अल्लाह कर सकता है, जहां उसने हजरत ईसा को पैदा किया फिर क्या था। तो हजरत ईसा की जगह उस गद्दार को सूली पे चढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से यहूद को इतना यकीन है कि हमने ईसा को कत्ल कर दिया है। लेकिन आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह निसा में आएगा मुझे लगता है कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जिसको जिब करके आए थे वो तो मसीह थे ही नहीं। मसीह अलैहि सलाम जो थे एक बाग में छुप गए जाके, और बाग के अंदर बनी हुई एक कोठरी में रात के वक्त इबादत में मशगूल थे। आपके दरवाजे के बाहर 12 हवारी मौजूद थे। उस वक्त वो शख्स वहां से निकल गया और जाकर सिपाहियों को ले आया ताकि आपको गिरफ्तार कराए। और जब रोमन सिपाही मोमबत्तियां उठाए अंदर आए देखा तो उसने सिपाहियों से कहा कि मैं अंदर जाऊंगा। और उस शख्स ने कोड वर्ड रखा था कि इनमें से ईसा कौन है, जब मैं अंदर जाऊं और मैं किसी से कहूं ओ माई गॉड, ओ मेरे अल्लाह, या बाज कहते हैं कि ओ हमारे उस्ताद कुछ, तो उसको पकड़ लेना वो मसीह है। रोमन्स को क्या पता कौन है, क्योंकि उस वक्त में तस्वीरें शक्लें तो होती नहीं थी आम पे। जब ये शख्स अंदर गया ना तो अल्लाह ने उसी वक्त कोठरी की छत फाड़ी, 4 फरिश्ते अंदर आए और उन्होंने हजरत ईसा को लिया और ऊपर चले गए, और इस शख्स की शक्ल जो थी वो हजरत ईसा की बन गई। जब हजरत ईसा की बना दी गई, जब ये बाहर निकला घबराया तो बाहर निकला तो दूसरे हवारियों ने इससे देख के कहा ओ हमारे उस्ताद या लीडर, क्योंकि वो समझे हजरत ईसा तो वो नहीं थे ना। तो ये सुनते सिपाही समझे कि ये बंदा जो हक कह के गया था ये वही बात है, उस पे उन्होंने पकड़ा उसको, उसको सूली पे चढ़ा दिया। और आज तक पूरी मसीहत में ये जो ईस्टर मनाया जाता है, या अप्रैल में शायद एक गुड फ्राइडे होता है, अमेरिका में भी होता है इधर भी होता है, किसी को बैड फ्राइडे कह देते हैं किसी को गुड फ्राइडे कह देते हैं, हमारा तो हर फ्राइडे गुड है। बहरहाल ये उसकी कहानी है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है, कोई मैं आपको नई चीज़ नहीं बता रही। लेकिन इनके बिलीफ के मुताबिक इन्होंने कत्ल कर दिया, लेकिन वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला बेहतरीन है तदबीर करने वाला। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर यह कि यहाँ पे ये बात कैंड दिया। अब ये जो दो जुमले पढ़े ना इसमें वाकया बता दिया। अब अगली जो आयतें ना, आयत नंबर 55 से 63, इसमें वो आप कह लीजिए कि उसका आंखों देखकर राज है। आगे देखिए आयत 55, ये बातें सारी याद रखिए कि चूंकि हमारे लिए ये नई चीज़ होती है ना, तो हम इसको एकदम एब्जॉर्ब नहीं करते। जितनी बात समझ आती है उसको समझ लें, जितनी नहीं आती ये आगे बार बार आने का मकसद भी ये होता है कि वक्त के साथ समझें। अब देखिए ये जो आयत है ना 55, इसका टॉपिक लिख लें, अल्लाह ताला का बराह रास्त खिताब है ईसा से, जब उनको सूली पे चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। और ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी खूबी है कि जब मुश्किलों में लोग पड़े होते हैं, खास तौर पे उसके नबियों की लोग जान लेना चाह रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला आसमानों से तसलियां दे रहा होता है। क्या कहा, इस कालल्लाहु, जब कहा अल्लाह ने या ईसा, ए ईसा, डायरेक्ट खिताब है ना, इन्नी मुतवफी का, बेशक मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं, वराफियु का इलैया, और अपनी तरफ उठा लेने वाला हूं। दो बातें हैं ये, फिर इस पे बात होनी है बाद में, इसलिए ज़हन में रखिएगा। पहली बात क्या कही, 5 वादे हैं, लिख लें, अल्लाह के ईसा से 5 वादे। नंबर 1 मुतवफी का, नंबर 2 राफियु का इला, नंबर 3 व मुतहिरु का मिन अल्लज़ीन कफरु, और तुम्हें पाक करने वाला हूं इन लोगों से जिन्होंने तुम्हारे साथ कुफर किया था। चौथा वादा, वजाइलु अल्लज़ीन तबउ कफौक अल्लज़ीन कफरु इला यौमिल क़ियामा, और गालिब करने वाला हूँ इन लोगों को जो तुम्हारी पैरवी करेंगे क़यामत तक, इन लोगों का जो तुम्हारा इनकार कर रहे हैं, यानी जो लोग तुम्हारे पीछे हैं उनको गलबा दूंगा। और पांचवा वादा क्या है कि सुम इलैया मरजिउकुम, फिर तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ है, फ़हकुम बैनकुम फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, फिर मैं फैसला कर दूंगा तुम्हारे माबैन इन बातों में जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनके लिए तसलियां डाल रहे हैं, ना सिर्फ ये कि अभी बचा लूंगा बल्कि आपके फॉलोअर्स के गलबे और बाद में सबके अल्लाह की तरफ आने की बात है। ये है वो आयत जिसको बुनियाद बनाकर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के दौर में मुसलमान कहने वाले खुद को एक गिरोह ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात को साबित कर दिया, और उनकी जगह मसीले मसीह के नाम पे गुलाम अहमद कादियानी साहब को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वो जगह देकर कह दिया कि वो वापस आ भी गए और वो एक नबी हैं। ये है वो आयत जिसकी वजह से एक नया मजहब पूरा और नाम ले लिया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। वो खुद कहते हैं, यानी कादियानियत कह लीजिए या अहमदियत कह लीजिए, उसकी बुनियाद जो एक आयत है। और इस आयत की जितनी मिस इंटरप्रिटेशन हुई है शायद ही किसी एक आयत की हुई हो। और इसमें भी लफ्ज़ क्या है, मुतवफ़ी का। कहते हैं देखो लफ्ज़ लिखा ना मुतवफ़ी का, मैं तुझे फौत करने वाला हूँ। तो वो कहते हैं हज़रत ईसा तो फौत हो गए, फिर अब किधर है? वो कहते हैं उनकी तो कब्र भी है बालाकोट में। तो फिर ये सारी आयतें अगली प्लस 100 से ज़ायद तवातुर की हदीसें हैं, तवातुर से मैं कंटिन्यूस, जिसमें इतने लोगों का झूठ बोलना मुमकिन नहीं है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं असल में ईसा फौत हो गए थे, अब उनकी मसील आएगी, मसीले मसीह। और वो कौन है? अल्लाह ताला के नबी की अहदीस से पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब दोबारा आएंगे तो लुद्ध नाम के मुकाम पर आएंगे। उन्होंने लुद्ध को लुधियाना कहा और लुधियाना में वो साहेब पैदा हुए। वो कहते हैं देखे ये लुधियाना में आ गए, लुद्ध लुधियाना कर दिया। हालांकि आप देखिए कि हज़रत ईसा के दौर में जितनी बातें होनी है उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। सही रिवायतों में कि आप आएंगे, आपका मुकाबला होगा, दज्जाल आपके दौर में आएगा, फिर आप स्लीप को तोड़ेंगे, सुअर का गोश्त हराम होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो साहेब जो थे, जो इनके ख्याल में, वो खुद भी दुनिया से चले गए, लेकिन वो सारी चेंजेस तो नहीं आई। इस पे तहरीफ करके इतना मुश्किल हुआ क्योंकि उन्होंने लफ्ज़ मुतवफ़ी को नहीं समझा। तो थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा। देखिए लफ्ज़ मुतवफ़ी का में वफा या है वफा, वादा वफा करना कहते हैं ना, पूरा करना, उर्दू में भी हम ये बोलते हैं। बात तफील में जब वफा युवफी तौफीयतन चला जाता है तो इसका मानी क्या होता है? किसी का पूरा देना। आयत 25 में हम पढ़ चुके हैं ये लफ्ज़, فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ। تو وفیت کا جو لفظ ہے پورا پورا دیا جانا، بدلہ دیا جانا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب باب تفاعل میں توفا یا توفا کا معنی آتا ہے تو کسی کو پورا لینا آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تھا کہ انا متوفی کا، تو مطلب کیا تھا؟ اب غور سے سنیے گا میرا جملہ۔ مطلب کیا تھا؟ کہ عام لوگوں کی صرف روح اوپر جاتی ہے جب وہ مرتے ہیں، آپ کے بدن کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، جسم اور روح کو پورے کا پورا لے جاؤں گا، کیونکہ آپ کو میں نے وہاں رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب آج ہمارے ہاں کوئی مرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں وفات پا گیا۔ وہ بھی یہ لفظ ہے، تو وفی متوفی کہتے ہیں مرنے والے کو، وفات پانے والے کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جسم ادھر ہوتا ہے، جان جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لفظ کئی جگہ استعمال کیا، مثلا سورہ زمر آیت 42 لکھے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو بھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کرتا ہے۔ یہاں نیند کے لیے لفظ دیکھیے استعمال ہوئے، اور لفظ وہی یتوفی۔ ہم جب سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم سے ایک روح چلی جاتی ہے، جاگتے ہیں تو واپس آ جاتی ہیں۔ موت کی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ دوسری روح بھی چلی جائے گی جو جا کے واپس نہیں آتی۔ کئی ایسے پرزے ہوتے ہیں نا، نکال لو پھر لگا لو، کچھ ایسے ہوتے ہیں نکال دیا تو سب ختم ہوتا ہے۔ تو ہمارے جسم میں ایسی چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں جو لفظ بولا گیا ہے، اس میں ڈیفینیٹلی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم اور روح کے ساتھ رکھا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، شعور کے ساتھ ہوتا ہے۔ نیند میں بھی ہماری روح چلی جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں توفی کا یہ مطلب کرنا کہ حضرت عیسیٰ کو فوت کر دیا گیا، پھر تو آپ دیکھیے پیچھے جو بات تھی کہ وفیت، تمہارے عمل فوت ہو جائیں گے، وہاں کیا پڑھا تھا؟ فقی فائزہ جماناہم لیوم لا ریب فی وفیت کل نفس، پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ وہاں یہ تو نہیں کہا گیا کہ فوت کر دیے جائیں گے ان کے سارے عمل جو انہوں نے کیے۔ تو یہاں خلاصہ کیا نکلا؟ کہ پورا پورے کے لفظ کو فوت کا لفظ، یعنی موت کا لفظ بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ دوسری بات بھی دیکھیے گا، بہت اہم ہے، جو اسی لفظ میں آپ کو آگے دکھے گی۔ اگر تو متوفی کا کہہ دیا تو پھر آگے ورافیو کا الہ کیوں کہا اور تجھے اپنی طرف بلند کروں گا؟ اگر آپ پہلا ترجمہ جو میں نے بتایا سامنے رکھیں کہ اے عیسیٰ میں آپ کو پورا لوں گا پھر اپنی طرف بلند کروں گا، اگر فوت کر دیا تو رافیو کا الہیہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کی تعویل کیا کرتے ہیں؟ تیرے درجے بلند کروں گا۔ تو نوٹ کیجئے گا کہ رفع کا معنی ہوتا ہے بلندی، اللہ کا نام بھی اور رافع رفیع الدرجات قرآن میں آتا ہے، بٹ جب اس سے آگے صلہ यानी प्रपोजिशन इलाज होके लगी हुई है तो टूवर्ड्स मी, रफिया इलाज का मानी फिजिकली बुलंदी है। क्या समझ आया? आप देखिए बास लोग कहते हैं ना ये आप क्या आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं, लेकिन अरबी पढ़ के देखें। जैसे आप देखिए साइन इन साइन आउट, अरबी जुबान में एक लफ्ज़ का एक ही मानी मॉनिटर करना। क्लास में मॉनिटर कौन है? जो सबसे अच्छा पढ़ता है उसको मॉनिटर किया। आप हॉस्पिटल में जाएंगे वो कहेंगे मरीज को मॉनिटर किया जा रहा है, यानी उसको देखा जा रहा है। एक ही लफ्ज़ के कई मुख्तलिफ मानी होते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए साइन इन साइन आउट, पुट इन पुट आउट, टेक इन टेक आउट। इन आउट जो कुछ कर रहा है ना वो यहाँ राफिया के बाद इला कर रहा है, इलैया मेरी तरफ। अगर हजरत ईसा के दर्जे सिर्फ बुलंद होते ना तो ये कहना चाहिए था वराफियों का, तुझे बुलंद कर दूंगा, तेरी इज्जत कर दूंगा। राफी का इलाज जब आता है तो फिजिकली किसी को अपलिफ्ट करना, जैसे किसी को बच्चे को आप कमर से उठा के तो ऊपर छत को उसका हाथ लगवा दें। तो बहरहाल ये एक आम समझ आने वाली बात है, लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते। अल्लाह ताला ने कहा व मुतहिरु का मिन अल्लज़ीना कफरू, हम आपको इन लोगों से पाक कर देंगे। कितना क्लियर मानी है, लोग आपकी जान ले रहे, मैं आपको बदन और रूह के साथ उठाऊंगा, फिर अपनी तरफ बुलंद करूंगा, फिर इन लोगों से पाक कर दूंगा जो आपके दुश्मन बने हुए। यहां तक बात होगी मुतहिरु का, यानी ये आपकी जान नहीं ले सकेंगे, ये भी हो गया। व जाइलुल्लज़ीना तबऊ का फौक अल्लज़ीना कफरू इला यौमिल क़ियामा, ये बड़ी गौर से देखने लिए आए थे। क्या अल्लाह ताला का वादा है? हजरत ईसा के फॉलोअर्स का क्या नाम है? नसारा, तबाऊ का। अल्लाह सीना काफर इधर कौन है? किन्होंने हजरत ईसा की जान लेने की कोशिश की? तो यहां बताया कि नसारा को यहूद के ऊपर मैं क्यामत तक गालिब कर दूंगा। बात समझ गए? आज देखिए दुनिया में, पूरी दुनिया के ऊपर नसारा की हुकूमत है, आबादी में ज्यादा है, रिसोर्सेज में ज्यादा है, यहूद तो बहुत थोड़े से है, लेकिन ये वादा अल्लाह ताला का पूरा हुआ। यहूद जिन्होंने हजरत ईसा का इनकार किया था उस वक्त से लेकर आज तक हजरत ईसा के फॉलोअर्स से मार खा रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 30 या 33 ईस्वी में आसमान पर उठा ली गई, इनकी उम्र या 30 थी या 33 के करीब थी। उसके बाद से आप देखिए यहूद पर ईसाइयों की तरफ से अजाब बरस रहा है, क्या कुछ हुआ। हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 40 साल बाद यानी 70 ईस्वी जब हुआ तो टीटस या टाइटस कह लीजिए रोमन था, उसके हाथों हैकले सलेमानी मस्मार हुआ और यरूशलम में 120,000 या 133,000 यहूद कत्ल कर दिए गए एक दिन में सिर्फ। ये सब कुछ हो चुका है। आप सलीबी जंगे पढ़े तो सही, आप कहते हैं मुसलमानों के साथ जंगे नहीं, यहूद और नसारा की आपस की जंगे देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि खून की नदियां बहती थी। 2000 साल हो गए उनका काबा गिरा पड़ा, एक दीवार है जिसको दीवारे गिरिया कहते हैं, जाके वहां यहूद रोते हैं, आज भी उनकी वो पूरा किबला मौजूद नहीं है। तो ये सब कुछ इस अल्लाह के वादे की सच्चाई है कि मैं जाइलुल्लज़ीन तबऊ कफौकल्लज़ीन कफरू, कि नसारा का गलबा उन पे होगा। फिर इसी तरह देखिए हैकले सुलेमानी बुख्त नसर ने 6 सदी कबल मसीह में गिरा दिया जाके, फिर यरूशलम की ईंट से ईंट बचा दी, पीछे आप पढ़ चुके हैं ये वाकया हजरत उज़ैर के नाते से। लाखों यहूदियों को तलवारों में डाला, लाखों को कैदी बना के बाबुल ले आया, उन्हीं में से एक कौन बच गए थे? हजरत उज़ैर। फिर वो बस्ती से गुजरे, तीसरा पारा शुरू का वाकया याद कीजिए। तो ये करते कराते आप कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने ये रखा। फिर हजरत उज़ैर के थ्रू दोबारा इनका यरूज हुआ, इनका माबद खाना दोबारा बनाया गया, फिर 70 ईस्वी में जब मनहदम किया गया था। और इस तरह से आप देखिए कि यहूद को फिर दोबारा फलस्तीन से निकाला हजरत उज़ैर के दौर में। तो कहने का मकसद यह है कि आज भी पूरी दुनिया को देख, रशियन हो इंडिया हो कोई भी नाम ले लीजिए, आज भी ये सिर्फ एक छोटी सी दौर में एक छोटी सी जगह पे बैठे हैं, लेकिन माइंड बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइज बहुत है और मुस्तकबिल पे नजर रखते हैं, इसलिए दुनिया को इशारों पे नचा रहे हैं। लेकिन ये वक्त ही है, ये हमेशा नहीं रहेगा, याद रखिए। और ये जो इनका दौर था जिसमें इनके ऊपर बहुत मार पड़ी, दौरे इंतशार कहलाते हैं। अगर आप इनकी बुक्स को पढ़ना चाहें, डायस्पोरा के लफ्ज लिखिए जाके गूगल में, पूरी हिस्ट्री आएगी। हत्ता के हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के दौर में ईसाइयों ने एक माहदे के तहत यरूशलम मुसलमानों के हवाले किया था, और हजरत उमर ने उस वक्त कहा था कि अब ये ओपन सिटी है, अब यहूद आए नसरानी आए जो भी आए सब आ सकते हैं। हालांकि वो प्रीस्ट ने ये कहा था कि आप इस शहर में किसी यहूदी को नहीं आने की इजाजत देंगे। ये सारी बातें हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, लेकिन आप देखिए कि वहां यहूद को एक ऐसा दौर आया था हजरत उमर के गलबे के बाद कि यहूद को वहां जायदाद बनाने की इजाजत नहीं थी, ये शर्तों में लिखा हुआ था हजरत उमर के साथ। हजरत उमर से लेकर सल्तनत उस्मानिया तक इस मुआहदे पे अमल होता रहा। किसी यहूदी को फलस्तीन में आबाद होने की इजाजत नहीं थी। फिर यहूद ने उस्मानी दौर में बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की और ये कुछ हुआ, लेकिन कोई ना माना। आखिर फिर उन्होंने साजिश की और खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया, और इसके बाद इनको समझ आ रहा था कि ये नहीं होगा कि करें। और कब हुआ ये? अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन की बात है हमारी जुबान में, 1917 में, 1917 यानी आज से समझे कि 100 साल पहले। ये इस दौर में कब से बात चल रही थी, इतने दौर से ये वहां नहीं थे। आप पैलेस्टाइन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये सारी बातें आपको उसमें मिल जाएंगी, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। 1917 में बरतानिया का एक बादशाह था बेल्फर, जिसका नाम है, उसके जरिए से बेल्फर डिक्लेरेशन का एक लॉ मंजूर हुआ, जिसमें यह हक दिया गया कि अब यहूद भी फलस्तीन में जायदादें खरीद सकते हैं और आबाद कर सकते हैं। सिर्फ उस डिक्लेरेशन के 31 साल बाद देखिए ये पूरे इसराइल के अंदर छा गए। बात समझ आई? सदियों की हिस्ट्री को देख लें और सिर्फ ये आखिरी 30 साल देख लीजिए कि आज ऐसे लगता है कि यहूदी पूरी दुनिया की सियासत और कब्जे पे कंट्रोल में। और आप कहते हैं पूरी दुनिया में कितनी इनकी आबादी है? 1.5 करोड़ से भी कम है। मुसलमान कितने हैं इस वक्त? ऑलमोस्ट 2 बिलियन, 2 बिलियन मुस्लिम, और इनके मुकाबले 1.5 करोड़। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? आज से कई साल पहले मेरे ख्याल 6-7 करोड़ थी, अब कितनी है? 20 करोड़। मेरा ख्याल है जितनी इस्लामाबाद की आबादी होगी ना, मैं ऐसे गैस कर रही हूँ क्योंकि सबसे छोटा शहर या आबादी में एक वो है, वो 1.5 करोड़ ही होगी। और इतने पूरी दुनिया में इस वक्त यहूद है, आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि ये तफरीच नहीं करते, ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरी बात है कि जो जितना अपने आप को खरफन मौला समझेगा वो अकेला ही रह जाएगा, लोग उसके मुंह पे कहें ना कहें लेकिन उससे जान छुड़ाएंगे। लेकिन इस वक्त भी ये जो फलस्तीन की रियासत है, इसके पीछे फिर ईसाइयों की मदद है। अगर आज अमेरिका पीछे से हट जाए और आज बड़ी बड़ी सुपर पावर्स इनका साथ ना दें, बरतानिया ना दें, तो आप देखिए कि ये कुछ नहीं कर सकते। नासिरीन यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, इसको कोई इनकार कर नहीं सकता। अल्लाह ने कहा सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर मेरी तरफ तुम सब का आना, ये है क्यामत का वादा। क्यामत के दिन अल्लाह फैसले करेगा क्या कि किन बातों में तुम झगड़े करते थे। वो फैसला अल्लाह ने दुनिया में बता दिया 56 में, फअम्मल्लज़ीना कफरू फअउज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फिद दुनिया वल आखिरा, तो वो लोग जो कुफर की रविश इख्तियार करेंगे मैं इनको अजाब दूंगा, बहुत सख्त अजाब, दुनिया में भी और आखरत में भी। बमालाहुम मिन नासिरीन, और कोई इनका मददगार नहीं होगा। यानी दुनिया में तो यहूद और नसारा की ये आंख मचोली चली, पर क्यामत के दिन फैसला किस बुनियाद पे? इस्लाम के नाम पे, क्योंकि आयत 57 वामल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, और जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें, फयुवफ़ीहिम उजूरहुम, तो वो इनको इनका अजर पूरे का पूरा देगा, पूरा अजर। देखिए यहाँ फिर वही लफ्ज आ गया, नोट कर ले, मुतवफ़ी का जो लफ्ज है ना वो यहाँ। अब क्या इसका मतलब फयुवफ़ीहिम उजूरहुम, मार दूंगा उनके अजरों को? बात ही नहीं समझ आती। वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। यहाँ पे ये स्टोरी का कहना चाहिए कि एंड हुआ है, कि कैसे लोगों ने हजरत ईसा की जान लेने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ने उनको बचा भी लिया और अल्लाह तआला ने उनको इज्जत भी दी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस क्यों बुलाया गया? कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी बातों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हजरत ईसा ने तो जान देने की तैयारी कर ही ली थी ना, यहां से आपके मेरे लिए अमल क्या है? हक पे जम जाए और हक को ना छोड़ें, अल्लाह आपके लिए बचाने के रास्ते बनाएगा। देखिए यहाँ ईसा को उनकी आंखों से बचा के ले गए, हिजरत के मौके पे नबी सल्लम को कुफारे मक्का की आंखों से बचा लिया, कि आपको मुझे अल्लाह ताला हक बात की बुनियाद पे किसी मुश्किल में डालेगा। अल्लाह ना करे कि कोई फितना आए, हमारा कोई मुकाबला गैर मुस्लिमों से नहीं, हम तो अपने 4 मुसलमानों के बीच में हक का इकरार नहीं कर पाते। लोग क्या कहेंगे, बातें होंगी, हंसी बनेगी, भाई बहन नाराज हो जाएंगे, ये वो। तो इस सारे में इस्तकामत का मौजू है कि जिंदगी का कोई मौका भी आ जाए, अपने आप को अल्लाह और उसके दीन से दूर ना करें। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो वो इसी चीज पे बनेगी, और अल्लाह ताला मेरे आपके लिए इसकी आसानी की बात कर दे। फिर इसी तरह से नबी सल्लम जब मेराज के मौके पे गए थे तो आपने हजरत ईसा को वहां देखा था, और रिवायतों में आता है हजरत इब्ने अब्बास से कि ईसा आसमान पर जिंदा उठाए गए, क्यामत के करीब ईसा का नजूल होगा, 100 से ज्यादा हदीस है नजूल मसीह पर, जब वापस आएंगे तो दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, और सजदा सिर्फ एक अल्लाह के लिए होगा। सही मुस्लिम की एक रिवायत नोट करें, शायद आपने कभी ना सुनी हो पहले। आपने फरमाया यहूद को, यानी यहूद वहां मौजूद थे, अल्लाह के नबी ने उनसे कहा इन ईसा लम यमुत, बेशक ईसा फौत नहीं हुए। वइन्नहु राजिउन इलैकुम, और वो यकीनन तुम्हारी तरफ लौट कर आएंगे। यानी अल्लाह के नबी ने उनको भी ये बात बताई, और बुखारी मुस्लिम में भी ये सारी चीजें मौजूद है। जिजिया कबूल नहीं करेंगे, उनके नजदीक या तो इस्लाम होगा या कत्ल। जो यहूद हैं उनको वो कत्ल करेंगे, नसारा उनके हाथों पे इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाएंगे, और दुनिया में हर तरफ अल्लाह ताला की बात होगी। तो अल्लाह ताला साहिब कुन फयाकून है, वो इतने बड़े बड़े काम करते हैं, इतना बड़ा आसमान खड़ा है, तो क्या इतना सा काम कोई मुश्किल है? नहीं मुश्किल। असल बात यह कि मेरा आपका इस पर ईमान होना चाहिए। अब वाक्या खत्म हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया, जैसे पिछले सबक के आखिर में हजरत मरियम और जकरिया और उनके घर वालों की कहानी के बाद फरमाया था कि नबी आपको ये बातें हम बता रहे हैं, आपको पहले से नहीं पता थी, तो यहां भी बिल्कुल आपको यही अंदाज मिलेगा। आयत 58, ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, ये हम आप पर पढ़ रहे हैं आयतों में से, और हिकमत से भरपूर जिक्र है, यानी ये हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं अल्लाह की आयतें, और हिकमत से भरपूर याद दहानी है। गोया के यहाँ भी बता दिया कि ये झूठे किस्से नहीं है, ये अल्लाह ताला आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए बातें सुना रहे थे। और अब आखिर में देखे नजरान के यहूद की अक्ल को झंझोड़ा जा रहा है कि तुम ईसा को इसलिए पूछते हो ना कि इनका बाप नहीं है, तो जरा बताओ कि फिर आदम के बारे में क्या ख्याल है। आयत 59, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की सी है। कैसे? खलकहु मिन तुराब, इसको मट्टी से बनाया, ये सूखी मट्टी है। तीन कब होती है? जब गीली हो जाती है, शुरू में डस्ट थी फिर तीन बनी। सुम्मा काल लहु कुन फयाकून, फिर कहा कि तू हो जा, तो वो हो गई। अब देखिए कितना प्यारा अल्लाह ताला ने ताल्लुक कायम किया कि फिर आदम को क्यों नहीं खुदा बनाते, उनका तो बाप भी नहीं था, उनकी तो माँ भी नहीं थी। तो जब बगैर बाप वाला अल्लाह का बेटा हो सकता है, तो बगैर माँ वाला तो जरूर ही होगा। तो ये सब झूठ है, क्योंकि आयत 60, अल हक मिन रब्बिक, हक आपके रब की तरफ से है। फला तकु मिनल मुंतरीन, तो हरगिज ना हो जाए शक करने वालों में से। क्या बताया आपको मुझे कि हक को मान जाओ, शक जिंदगी से निकाल दो। हजरत ईसा की असल हकीकत यही है जो कुरान ने बता दी, बाकी सब अफसाने हैं और कहानियां हैं। और ये जो मिनल मुमतरीन कहा गया, असल में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, लेकिन उनको सुनाया जा रहा है जिनके सामने ये आयतें उतर रही थी, यानी वफत नजरान। और क्यामत तक के नॉन मुस्लिम्स को ये बात बता दी गई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हैसियत के बारे में शक ना करना। आप देखिए जो कुरान पढ़ते हैं नॉन मुस्लिम्स, और मैं खास तौर पर पढ़ते हुए महसूस कर रही हूँ कि नसारा जब ये आयतें पढ़ते हैं उनके दिल की क्या हालत होती होगी। बिल्कुल ही उन्होंने तो ये बातें कभी सुनी भी नहीं होती ना। और इतनी खूबसूरत कुरान की देखे ना, यहाँ सिफात है, यहाँ जिक्र, अल हकीम, हिकमत वाला, जिक्र वाला, क्या मतलब कि ये कोई छोटी बात थोड़ी है। रेफरेंस कितना स्ट्रांग है, इतनी अहम बात इतनी प्यारी किताब में आ गई। तो मान जाओ कि ईसा खुदा नहीं थे, ईसा खुदा का बेटा नहीं, ईसा तीन में का तीसरा नहीं। ईसा क्या था जो उन्होंने खुद अपने लिए कह दिया, इन्नी अब्दुल्ला। और आखिरी आयात में फिर मजीद खोल के बात कर दी कि देखो फमन हाज जका फीह मिन बादी मा जाका मिनल इल्म। यहाँ थोड़ा सा पहले समझ लें फिर बताती हूँ। जब नजरान का वफद आया था ना नबी सल्लम के पास, तो उनके सामने तीन ऑप्शंस रखी गई थी। वही बात, मुसलमान हो जाओ, जब मुसलमान हो जाओगे तो तुम्हें इस्लाम मिल जाएगा। दूसरी बात है, मुसलमान नहीं होते तो जिजिया कबूल कर लो, ये नहीं है तो फिर खुले मैदान में आ जाओ। ये जो आयत है ना, इसका नाम है आयत मुबाहला। और मुबाहला क्या होता है कि एक मुस्लिम है और एक नॉन मुस्लिम है, दोनों के बीच में जब दलाइल की बुनियाद पे फैसला ना हो, आप अपने दलाइल दे रहे हैं, आप अपने दलाइल दे रहे हैं, ना आप उनके मान रहे हैं ना आप उनके मान रहे हैं, यानी एक मुस्लिम है और एक जीव है, या एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन है, या क्रिश्चियन और जीव है, वो हर बंदा अपनी बात कर रहा है तो नहीं मान रहे ना, तो फिर खुले मैदान में जाकर ये करना पड़ता है जो आयत के अंदर है। पढ़े फिर मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत देती हूँ। फमन हाज जका फीह मिन बादी मा जाका मिनल इल्मी, बस जो कोई झगड़ा करे आपसे इस इल्म के आने के बाद, यानी इतनी क्लियर कट बातें सुन सुनाकर भी कोई के दिल नहीं मानता, क्या करें, हुज्जतें बाजी करे, तो फकुल कह दीजिए, तालो नदु अबना ना वबना कुम, आओ हम बुलाते हैं अपने बेटों को और तुम बुलाओ अपने बेटों को, वनिसा ना वनिसा अकुम, और हम बुला लेते अपनी औरतों को और तुम बुला लो अपनी औरतों को। वनफुसा ना वनफुसकुम, और हम भी आ जाते हैं और तुम भी आ जाओ। फिर हम सब मिलकर दुआ करें और लानत करें अल्लाह की इन पर के जो झूठे हैं। ये है असल में उस वक़्त जब के दलाइल ना माने जाएं तो एक किस्म की एक दूसरे पे बददुआ की जाती है कि अच्छा भाई जो हम में सच्चा है वो ठीक है, जो झूठा है फिर उसके ऊपर अल्लाह की लानत आ जाए। याद रखिए, दो मुसलमान गिरोहों के बीच में मुबाहला नहीं हो सकता। आपने मनाजरेबाजी का नाम सुना होगा, बरेलवी उलमा और अहले हदीस उलमा के बीच में मनाजरा, हनफी और शाफी उलमा के बीच में मनाजरा। मुसलमान मुसलमान के साथ ये मुबाहले का अंदाज नहीं कर सकता, इसकी इजाजत नहीं है। इसके बाद दोनों में से एक जरूर मरेगा। अगर तीसरा ये वादा किया गया था उनसे नजरान के वफ़ा से कि आओ फिर खुले मैदान में ये बात कर ले, अब उनको पता था कि हम सच्चे नहीं झूठे नहीं जो भी है दिस एंड दैट, उसके बाद क्या हुआ? वो डर गए। अल्लाह के नबी ने जब ये बात किया और सब मिलकर करें गिड़गिड़ा कर दुआ करें जो भी है, तो उनके जो बड़े उलमा थे उन्होंने सर जोड़ा, कहने लगे नहीं 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 हम जिज़िया देते हैं। और उन्होंने कहा सॉरी नहीं हम नहीं लेते। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों को अपने बच्चों को लेके आ गए थे बाहर कि लाओ तुम भी। आपने फरमाया अगर ये मुबाहले की दावत कबूल कर लेते तो ये वादी इनके ऊपर आग बरसाती, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया उनको। तो वो समझ गए अपना बुरा अंजाम देख के उन्होंने अपने आप को बचाया। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना हाज़ा लहुल क़ससुल हक, यकीनन यही बिल्कुल सही सरगुज़िश्त है, ये सच्ची कहानी है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। वइन्नल्लाहा लहुल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन अल्लाह ताला ही जबरदस्त है हिकमत वाला है। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर मुंह फेर जाए, फ़इन्नल्लाहा अलीमुम बिल मुफ्सिदीन, तो फिर अल्लाह खूब जानता है मुफ्सिदों को। यहाँ पे आप देखिए कहानी पूरे सूरत मुबारका का नस्फ अव्वल का पहला और दूसरा हिस्सा पूरा हुआ, यानी आप कह लें कि आयत नंबर 31 तक एक मिजाज था, फिर 32 में ये, यानी आयत 63 पे आप कहेंगे सूरत का नस्फ हो गया, पहला नस्ब जिसको आप कह सकते हैं। और आपने देखा है कि कितना खोल के इसमें अल्लाह ताला ने बयान किया है ईसा अलैहि सलाम के बारे में। मैं ये सोचती हूँ, मुझे यहूद की परवाह नहीं, नसारा की नहीं, मैं उन मुसलमानों को सोचती हूँ जो फौजों की फौजें हैं। और इस वक्त भी आप देखिए कि हज़रत ईसा के मुकाबले में किसी और को मसीह ईसा मनाकर अपना अकीदा जैसे बनाए हुए। और आज आप सबको नसीहत करूंगी, आप लोग अपने तौर पे बैठे होंगे लेकिन यकीन कीजिए अपने और अपने आप को देखिए। और वो क्या है कि मुसलमानों की नस्लें इस वक्त ये जिस सोसाइटी में आप में फिर रहे हैं, कई मुसलमान बच्चे मुख्तलिफ अकीदे रखने वाले सारे मौजूद हैं और उनके अंदर से ये फर्क तक मिट गए, शादियां हो रही हैं, लोग कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये है वो है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह इल्म को आम करे। आज इल्म की कमी ने मुसलमानों को कहां कहां रुस्वा कर दिया। अल्लाह ताला मेरी आपकी समझ सीधी कर दे। और किस तरीके से लोग आप देखिए कि इन चीज़ों में पीछे होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता। और कहते कि उनके जो आलिम थे ना उसने इनको मशवरा दिया था कि ये दावत ना कबूल करना मर जाओगे, और वाकई ये हुआ कि अगर वो कर लेते तो फिर मामला जो था बिगड़ जाता। बुखारी की एक रिवायत सुन ली थी, इमाम बुखारी ने खुज़ैफा से रिवायत की कि नजरान के नसरानियों के दो सरदार रसूलुल्लाह के पास मुबाहले के लिए आए। हालात का जायजा लेने के बाद एक ने अपने साथी से कहा ऐसा ना करो, अल्लाह की कसम अगर यहाँ अल्लाह के नबी हैं और हमने मुबाहला किया तो हम और हमारे बाद हमारी नस्ल कभी फला ना पाएगी। चुनाचे वो लोग अल्लाह के नबी को जिजिया देने पर राजी हो गए। ये बुखारी की रिवायत है 4380 नंबर की। इमाम अहमद इब्ने अब्बास का कौल नकल किया कि अगर रसूलुल्लाह के साथ मुबाहले की नीयत करने वाले ऐसा कर गुजरते तो लौटने के बाद ना तो इन्हें अपना माल मिलता और ना अहले याल मिलते। तिर्मिज़ी और निसाई में भी इब्ने अब्बास का ये कॉल मौजूद है। मुसनद अहमद का 225 नंबर की ये रिवायत थी। तो आप देख लीजिए कि लोगों के दिलों के अंदर होता है कि इस्लाम सच्चा है लेकिन नसीब से मिलता है। मुझे आपको अल्लाह ताला का इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें बगैर आजमाइशों में डाले इस्लाम में रखा है। दुआ करें हमारी नस्लें इसी पे कायम रहें। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन यहाँ पे रुकेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।
इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन थुम्मा क़ाला लहु कुन फयकून الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون